ये आकाशवाणी है। अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साइप्रस भागीदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन में दृढ़ता से निहित है। निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता परिस्थितियों या सीमाओं से बंधी न होकर समय की कटौती पर खरी उतरी है।
अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस के निरंतर समर्थन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की।
पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है।
दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर सहमत हुए। भारत और साइप्रस ने आतंकवाद और हिंसक अतिवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद आज संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। दोनों देशों ने सभी देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण नेटवर्क को समाप्त करने, सुरक्षित पनागाहों को नष्ट करने, आतंकवादी बुनियादी ढांचे का खात्मा करने और आतंकियों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए कहा। साइप्रस ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता का अटूट समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं संबंध छद्म समूह सूत्रधार और प्रायोजकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने हाल के पहलगाम आतंकी हमलों में नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री साइप्रस की सफल यात्रा के बाद आज शाम कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अलग से इस मामले की जांच कर रहा है। इस बीच गुजरात में दुर्घटना के 99 मृतकों के DNA नमूनों का अब तक मिलान हो चुका है। इनमें से 64 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मिलान की प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। दुर्घटना में मारे गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सरकार ने जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी कर दी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आपदा प्रबंधन क्षेत्र में वैश्विक प्रमुख बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि भारत ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सटीक पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 20 जून तक गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।